अध्याय 9 ऐ थया जुल्ली हिरानी हो रामा। खंड 1 महाराष्ट्री महिलाओं की तरह धोती लपेट कच्चे बांधे और तंग चोली कसे दुलारी दनादन दंड लगाती जा रही थी के शरीर से टप टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पला बन गया था। कसरत समाप्त करके उसने चार खाने के अंगोचे से अपना बदन पोछा, बंधा हुआ जूड़ा खोलकर सिर पर पसीना सुखाया और तत्पश्चात आदमकद आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदंडों पर मुग्ध दृष्टि फेरते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगाए हुए चने चबाने आरंभ किए। उसका चड़क चवड़ पर्व अभी समाप्त न हो पाया था कि किसी ने बाहर बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दुलारी ने जल्दी जल्दी कक्ष खोलकर बकायदे धोती पहनी, केश समेटकर करीने से बांध लिए और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी। बगल में बंडल सी कोई चीज दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। उसकी दृष्टि शर्मिली थी और उसके पतले ओठों पर जेब भरी फीकी मुस्कुराहट थी। बिलौल बहयापन से भरी अपनी आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना। टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होठों में ही विलीन हो गई। उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्योहार था इसलिए मैंने सोचा कि, कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला, उसे दुलारी के हाथों में दे दिया। दुलारी बंडल लेकर देखने लगी, उसमें खद्दर की एक साड़ी लपेटी हुई थी। टुन्नू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बनी है लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़े स्वर से पूछा। टुन्नू का क्षीण बदन और भी सूख गया। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया ना कि होली का त्योहार था। टुन्नू की बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई, होली का त्योहार था तो तुम यहाँ क्यों आए जलने के लिए? क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए? तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो, कौन हो? खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। और उसने उपेक्षा पूर्वक धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। उसने सिर झुकाए हुए आर्द्र कंठ से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूँ नहीं। देखो, पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी हुई भेंट नहीं ठुकराती। तुम तो हाड़ मास की बनी हो। हाड़ मास की बनी हो तभी तो कुत्तों के मारे नाक को दम हो रहा है, दुलारी ने कहा। टुन्नू ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से कज्जल मलिन आंसुओं की बूंदे नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप टपक रही थी। दुलारी कहती गई, अभी तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे और मजनूपन सिर पर सवार हो गया। बाप दिन भर घाट अगोर कौड़ी कौड़ी जुटा कर गृहस्थी चलाता है और बेटा आशिकी के घोड़े पर सवार सरपट दौड़ रहे हैं। तुम्हारे ही भले के लिए कहती हूँ, यह गली तुम जैसों के लिए नहीं है। और फिर आशिक भी होने चले तो मुझ पर, जो शायद तुम्हारी माँ से भी उम्र में बरस भर बड़ी है। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। उसने इतना ही नहीं, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। और कोठरी से बाहर निकल वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भाव अब भी वक्र थी परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई, उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की ओर देखा और फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को बार बार चूमने लगी। खंड 2 दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुछ 6 मास हुए थे। पिछली भादों में तीज के अवसर पर दुलारी खुजवा बाजार में गाने गाई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी। उसे पद्य में भी सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों की उससे कोर दबती थी, इसलिए उसके मुँह पर जाने में सभी घबराते थे। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा कर खुजवा वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली थी। परंतु जब साधारण गाना चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी और विपक्ष में 16-17 वर्ष का एक लड़का गौनहारियों की गोल में सबसे आगे खड़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा, रनिया ला परमेश्वरी लोट, तब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रह गया। बालक टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था, रनिया ला परमेश्वरी लोट, तर घोड़े से घेवर बुदिया, दे माथे मोती का बिंदिया और किनारी में सारी के टाक सुनहली गोट रनिया। सनाई वालों ने टुन्नू के गीत को बंद बाजे में दोहराया। लोग लोग यह देखकर चकित थे कि बात बात में तीर कमान हो जाने वाली दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्करा रही है। कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी। टुन्नू के सार्वजनिक आविर्भाव का यह तीसरा या चौथा अवसर था। उसके पिता घाट पर बैठकर और कच्चे महल के 10-5 घर यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक कराकर कठिनाई से गृहस्थी की नौका खे रहे थे, परंतु पुत्र को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लगा। उसने भैरव हेला को अपना उस्ताद बनाया और शीघ्र ही सुंदर कजली रचना करने लगा। वह पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था और अपनी इस विशेषता के बल पर वह बजरडीहा वालों की ओर से बुलाया गया था। उसकी शायरी पर बजरडीहा वालों ने वाह वाह का शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा लिया। खुजवा वालों का रंग उतर गया। टुन्नू ने दुलारी के पके जामुन जैसे काले रंग की ओर इशारा करके पद्य में कहा, तुम्हें दुनिया नारी क्यों कहती है, तुम तो सचमुच कोकिला हो। रंग तुम्हारा कोकिला जैसा ही है, कंठ में भी उसकी कूक को मात करता है। कोकिला को कौवे की मादा पालती है, तुम्हारा भी पोषण दूसरों द्वारा हुआ है। कोयल की आँखें लाल लाल होती हैं, वह कमी भी पूरी हुआ चाहती हैं। मेरा गाना सुनकर तुम्हारे नेत्र भी लाल होते जा रहे हैं। टुन्नू ने भूल की दुलारे की आंखें क्रोध से नहीं गांजे की आग से लाल हो रही थी। वह टुन्नू का यह आक्षेप सुनकर जोर से हंस पड़ी। टुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया। पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी, सहनाई का मधुर स्वर गूंजा। अब दुलारी की बारी आई। उसने अपनी दृष्टि मदविहल बनाते हुए टुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे को भर आंख देखा और उसके कंठ से छल छल करता स्वर का सोता निकला। कोड़ियल मुहैवी लेब वकोट, तोर बाप तक घाट अगोरन, कौड़ी कौड़ी जोड़ बटोरलन, मैं सरबउला बोल जिंदगी में कब देखले लोट कोड़ियल। अब बजरडीहा वालों के चेहरे हरे हो चले, वे वाह वाही देते हुए सुनने लगे। दुलारी गा रही थी, तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, तू तो वास्तव में बगुला है। बगुले के जैसा ही तेरे शरीर का रंग है, वैसे तू बगुला भगत भी है। उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है, परंतु कभी न कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा, उस दिन तेरी कलई खुल जाएगी। उसके जवाब में टुन्नू ने गाया था, जितना मन माने गरियावा, आईने दिल को तपन बुझावा, अपने मन का बिथा सुनाई हम डंके की चोट रनिया। इस पर सुंदर के मालिक फेकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े। दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की। यही दोनों का प्रथम परिचय था। उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया। मजलिस बदमजा हो गई। खंड 3। टुन्नू को विदा करने के बाद जब दुलारी प्रतिष्ठित हुई तो सहसा उसे ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। आबरवा की जगह खद्दर का कुर्ता और लखनवी दोपलिया की जगह गांधी टोपी देखकर दुलारी ने टुन्नू से उसका कारण पूछना चाहा था, परंतु उसका अवसर ही नहीं आया। उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़ों का संदूक खोला। उसमें बड़े यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबाकर रख दी। उसका चित्त आज चंचल हो उठा था। उसने अपने प्रति टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव उसने पहली ही मुलाकात में कर लिया था, परंतु उसने उसी भावना की एक लहर मात्र माना था। बीच में भी टुन्नू उसके पास कई बार आया, परंतु कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। कारण टुन्नू आता घंटे आध घंटे दुलारी के सामने बैठा रहता, पूछने पर भी हृदय की कामना प्रकट न करता, केवल अत्यंत मनोयोग से दुलारी की बातें सुनता, फिर धीरे से छाया की तरह खिसक जाता। यौवन के अस्तांचल पर खड़ी दुलारी टुन्नू के इस उन्माद पर ही मन ही मन हंसती, परंतु आज उसे कृशकाय और कच्ची उम्र के पांडुमुख बालक टुन्नू पर करुणा हो आई। पतित जीवन की अंधेरी घाटियों में 25 वर्ष लगातार चक्कर लगा लेने के बाद अब दुलारी को यह समझने में देर न लगी कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। वह जिस वस्तु पर आसक्त है उसका संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। उसने आज यह भी अनुभव किया कि आज तक उसने टुन्नू के प्रति जितनी उपेक्षा दिखाई है वह सब कृत्रिम थी। सच तो यह है कि हृदय के एक निवृत्त कोने में टुन्नू का आसन दृढ़ता से स्थापित है, फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह घबरा उठी, विचार की उलझन से बचने लगी। उसने चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था में जुट पड़ी। त्यों ही धोतियों का एक बंडल लिए फेकू सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवेश किया। दुलारी ने धोतियों का बंडल देख उधर से दृष्टि फेर ली। फेकू ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया और कहा, देखो तो कैसी बढ़िया धोतियां हैं। बंडल पट्ठो कर जमाते हुए दुलारी ने कहा, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था, वह वादा तीज पर पूरा कर दूंगा। आजकल रोजगार बड़ा मंदा पड़ गया है, फेकू ने समझाते हुए कहा। जुए के रोजगार में तो सुना है हमेशा लालची को ही फायदा रहता है, दुलारी ने कहा। रोजगार का मार पे तुम क्या समझोगी, 50 रुपया रोज कोतवाल साहब को दे देना पड़ता है, वही 10-20 रुपया रोज हल्के के पुलिस को चटाने में उड़ जाता है। तीज पर तुम्हें बनारसी साड़ी जरूर पहना दूंगा, दुलारी को आश्वासन देता हुआ फेकू बोला। दुलारी फेकू को उत्तर देना ही चाहती थी कि जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल भैरवनाथ की सकरी गली में घुसा और भारत जननी तेरी जय हो गीत की ध्वनि से उभय पार्श्वों में खड़ी इमारतों की प्रत्येक कोठरी गूंज गई। एक बड़ी सी चादर फैलाकर चार व्यक्तियों ने उसके चारों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था। उसी पर खिड़कियों से धोती साड़ी कमीज कुर्ता टोपी आदि की वर्षा हो रही थी। सहसा दुलारी ने भी अपनी खिड़की खोली। मैनचेस्टर तथा लंकाशायर के मीलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारे वाली नई कोरी धोतियों का बंडल नीचे फैली चादर पर फेंक दिया। चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आंख एक साथ खिड़की की ओर उठ गईं, कारण अब तक जितने वस्त्रों का संग्रह हुआ था वे अधिकांश फटे पुराने थे, परंतु यह नया बंडल गिरा उसकी धोतियों की तह तक न खुली थी। चारों व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोगों की आंखें बंडल फेंकने वाली की तलाश खिड़की में करने लगी। त्यों ही खिड़की पुनः धड़ाके से बंद हो गई। जुलूस आगे बढ़ गया। जुलूस में सबसे पीछे जाने वाली खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी यही दृश्य देखा। अपनी फर्राटी मूछों पर हाथ फेरते हुए सजग नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया। इतने में ही ऊपर खिड़की का एक पल्ला फिर खुला और तुरंत ही पुनः धड़ाके से बंद भी हो गया। परंतु इसी बीच अली सगीर ने देख लिया कि किवाड़ दुलारी ने खोला था और एक पुरुष ने झटके से उसका हाथ किवाड़ के पल्ले पर से हटा दिया और दूसरे हाथ से पल्ला बंद कर दिया। उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुखबिर फेकू सरदार की उड़ती झलक देख पुलिस रिपोर्टर के रोबीले चेहरे पर मुस्कान की शुद्ध रेखा क्षण भर के लिए खिंच गई। उसने तनिक हटकर चबूतरे पर बैठे बेनी तमोली के सामने एक दुवन्नी फेंक दी। खंड 4। फेकू सरदार की चौड़ी और पुष्ट पीठ पर शपाशप झाड़ झाड़ती तथा उसके पीछे पीछे धमाधम सीढ़ी उतरती दुलारी चिल्लाई, निकल निकल, अब मेरी देहरी डाका तो दांत से तेरी नाक काट लूंगी। उत्कट क्रोध से दुलारी का आंचल खुल पड़ा था, उसके नथने फूल गए थे, अधर फड़क रहा था और आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी और इसने शिक जुड़ा बिखर कर उसके निर्वसन वक्ष का लज्जा निवारण कर रहा था। फेकू के गली में निकलते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्टर से आंखें चार होते ही झेपने के बावजूद लाचार सा होकर फेकू उसकी ओर बढ़ा और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लौटी। आंगन में खड़ी उसकी संगनियों और पड़ोसियों ने उसकी ओर कुतूहल भरी दृष्टि से देखा, परंतु दुलारी ने उनकी ओर आंख तक न उठाई। सीढ़ी चढ़कर उपेक्षा से झाड़ अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वह अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बटलोही में दाल चूर रही थी। उसने पैर की एक ठोकर से बटलोही उलट दी, सारी दाल चूल्हे में जा गिरी, आग बुझ गई। परंतु दुलारी के दिल की आग अब भी भट्टी की तरह जल रही थी। पड़ोसियों ने उसकी कोठरी में आकर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जलधारा गिराना आरंभ किया। फलस्वरूप वह ठंडी भी होने लगी कि इसी बीच फेकू की पुरानी रक्षिता बिट्टों के मुंह से निकल पड़ा, हाँ दुलारी, मर्द मानुष के ऊपर तुमने झाड़ कैसे उठा लिया, फिर उसके ऊपर जिसमें तुम्हें रानी की तरह रख छोड़ा है। और दुलारी फिर उबल पड़ी। नियमित व्यायाम से पुष्ट अपनी भुजाओं को अभिमान पूर्वक देखते हुए उसने कहा, रानी बनाकर रखा है तो कौन सा जग जीत लिया, मैंने भी क्या अपनी अनमोल इज्जत उसे नहीं सौंप दी। नारी के प्राप्त सहज सम्मान से वंचित होने की कीमत क्या इतनी भी नहीं, नारी के प्राप्त सहज सम्मान से वंचित होने की कीमत क्या इतनी भी नहीं। दुलारी को पुनः भड़कते देख कुंदन ने कहा, ठीक कहती हो बहन, पैसे के बल पर तन खरीदा जा न सकता, तन खरीदा जा सकता है मन नहीं, लेकिन आज बात क्या हुई जो, कुंदन की बात काटती हुई दुलारी बोली, जरतुआ है और क्या, तुम ही लोग बताओ, कभी टुन्नु को यहाँ आती देखा है? यह तो आदि गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नु यहाँ कभी नहीं आता, झिंगुर की माँ ने कहा। वह यह बात बिल्कुल भूल गई थी कि उसने कुल 2 घंटा पहले टुन्नु को दुलारी की कोठरी से निकलते देखा था। झिंगुर की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियाँ ओठों में मुस्कुराई, परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। दुलारी पुनः शांत हो चली। इतने में कंधे पर जाल डाले 9 वर्षीय बालक झिंगुर ने आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताजा समाचार सुनाया कि टुन्नु महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए। और कोई दिन होता तो दुलारी इस समाचार पर हंस पड़ती, टुन्नु को 2-4 गालियां सुनाती, परंतु आज यह संवाद सुन वह स्तब्ध हो उठी। उसने यह भी न पूछा कि घटना कहाँ और किस तरह हुई। कभी किसी बात पर न पसीजने वाला उसका हृदय कातर हो उठा और सदैव मरुभूमि की तरह धू धू जलने वाली उसकी आंखों में मेघमाला घिर आई। उसने पड़ोसियों की निगाह से अपने आंसुओं को छिपाने का कोई प्रयत्न, पड़ोसी ने भी कर्कशा दुलारी की हृदय की कोमलता देख दंग रह गई। प्रायः वे सभी पतिता थी और सच्चे पतित का पहला लक्षण हृदयहीनता ही होता है। उन्होंने दुलारी के इस आचरण को वारवंता सुलभ अभिनय मात्र समझा। बिट्टो ने दिल लगी भी की। उसने कहा, हम लोगों का जो रोजगार है उसमें तो दुख सबसे ज्यादा छिपाया जाता है। मुझे लुका छिपी फूटी आंखें नहीं सुहाती, मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया सब डंके की चोट, दुलारी ने कहा। वह उठी और सबके सामने संदूक खोल उसमें से टुन्नू की दी हुई आंसुओं के काले धब्बों से भरी खद्दर की धोती निकाल उसने पहन ली। उसने झिंगुर को बुलाकर पूछा, टुन्नू कहाँ मारा गया? झिंगुर ने बताया, टाउन हॉल। और जब वह टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर ही थाने के मुंशी के साथ फेकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा, आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा। खंड 5। रिपोर्ट की कॉपी मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपने सहकारी को डांटा, शर्मा जी आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता, संवाद संग्रह तो आपके बूते की बात नहीं जान पड़ती। भयभीत शर्मा जी ने गड्ढे में कौड़ी खेलती हुई अपनी आंखों से चश्मा उतार कर उसे कुर्ते से पोछते हुए पूछा, क्यों क्या हुआ? प्रधान संवाददाता ने खींच कर कहा, यह जो आप पन्ने पर पन्ना अलिफ लैला की कहानी से रंग लाए हैं वह कहाँ छपेगा और कौन छापेगा, इस पर भी आपने कुछ विचार किया है? आपने जो लिखा है उसका आपके सिवा कोई और भी गवाह है? आज आपकी रिपोर्ट छाप दूं तो कल ही अखबार बंद हो जाए, संपादक जी बड़े घर पहुंचा दिए जाएं। अपने संबंध में वार्ता होती सुनकर संपादक जी भी सजग हुए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर छक रहा हूँ और क्या, प्रधान संवाददाता ने कहा। पढ़िए, संपादक ने आदेश दिया। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए आप ही पढ़कर सुनाइए, वह शीर्षक भी पढ़ दीजिएगा जो आपने संवाद पर लगाया है। क्या शीर्षक है? ऐठ या झुनली हैरानी हो रामा, जेब भरी मुद्रा में शर्मा जी ने कहा और फिर धीरे धीरे वह रिपोर्ट पढ़ने लगे। कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही, यहाँ तक कि खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। सवेरे से ही जुलूसों का निकलना जारी हो गया जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता जाता था। ऐसे ही एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। उक्त जुलूस जब टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियां दी। गाली देने का प्रतिवाद करने पर जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारी, चोट पसली में लगी, वह तिलमिलाकर जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में लाद लिया। लोगों से कहा गया कि अस्पताल को ले जा रहे हैं, परंतु हमारे संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया कि वास्तव में टुन्नू मर गया। रात के 8 बजे टुन्नू का शव वरुड़ा में प्रवाहित के जाते भी हमारे संवाददाता ने देखा है। इस सिलसिले में यह भी उल्लेख है कि टुन्नू का दुलारी नामनी गौनहारिन से भी संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में भी, जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया गवाया गया। उसे भी शायद टुन्नू की मृत्यु का संवाद मिल चुका था। वह बहुत उदास थी और उसने खद्दर की एक साधारण सी धोती मात्र पहन रखी थी। सुना जाता है कि उसे पुलिस जबरदस्ती ले आई थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या की गई थी, परंतु विवश होकर गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। कुख्यात जमादार अली सगीर ने मौसमी चीज गाने की फरमाइश की। दुलारी ने फीकी हंसी हंसकर गाना प्रारंभ किया। उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया, एठ है जुलनी हैरानी हो रामा कासों मैं पूछूं। पास ही में कंपनी बाग के फूलों की खुशबू से वायुमंडल आमोदित हो उठा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था जिसे भेद कर दुलारी की सुन लहरी गूंज उठी, एठ है जुलनी हैरानी हो रामा कासों मैं पूछूं। बूट की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नु जिस स्थान पर गिरा था उसी स्थल पर दृष्टि जमाए हुए दुलारी ने दोहराया, एठ है जुलनी हैरानी हो रामा। फिर चारों ओर उद्भ्रांत दृष्टि घुमाते हुए उसने गाया, कासों मैं पूछूं। उसके अदर प्रांत पर स्मित की एक छेड़ रेखा सी खिंची। उसने गीत का दूसरा चरण गाया, सास से पूछो ननदिया से पूछो देवरा से पूछत लजानी हो रामा। देवरा से पूछत कहते कहते वह बिजली की तरह एकदम घूमी और जमादार अली सगीर की ओर देख उसने लजाने का अभिनय किया। उसकी आंखों से आंसू की बूंदे छार उठी, या यो कहिए कि वे पानी की कुछ बूंदे भी, जो वरुणा में टुन्नू की लाश फेंकने से छिटकी और अब दुलारी की आंखों में प्रकट हुई। वैसा रूप पहले कभी नहीं दिखाई पड़ा था, आधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। सत्य है परंतु छप नहीं सकता, संपादक ने कहा।